हरे कृष्णा। तो आज तारीख क्या है? आज के 13 अगस्त के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कुछ लोग नए आए हैं, उनका विशेष स्वागत है। हमारे नर्सिंग स्कूल के पहले वर्ष के विद्यार्थी सब लोग भी यहाँ पर आए हैं। ये कार्यक्रम जो है, ये हमारे हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों के लिए हर मंगलवार को दोपहर को होता है। 2:30 बजे इसमें सब लोग आकर भगवान के नाम का जप करते हैं, कोई रोजड़ी करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई माला करते हैं, और फिर उसके बाद में भगवान के विषय में प्रवचन होता है। तो आज आपको क्या सुनने की इच्छा है? मेरे मन में एक कथा याद आ रही है, वो ऐसी है कि वो श्रीमद् भागवत नाम का एक शास्त्र है। कितने लोगों को पता है श्रीमद् भागवतम क्या है? बस दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम आपको श्रीमद् भागवत की कहानी बताएं। श्रीमद् भागवत ये एक 18 पुराणों में से एक पुराण है। आपको सबको पता होना चाहिए, आपको बहुत पुराने और कर्मचारी यहाँ के, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं और सो जाते हैं, कुछ लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, कुछ लोग सुनते ही नहीं हैं इसलिए याद नहीं रहता है। हाँ, तो अभी आप ध्यान से सुन लो कि ये श्रीमद् भागवतम क्या है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो है वो केवल मनुष्यों के लिए है, और अगर आप अपने आप को मनुष्य समझते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत वो शास्त्र है जो सर्वोच्च शास्त्र है। शास्त्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र होता है वो तमोगुण में होता है। जो लोग तमोगुण में है उनको ऊपर उठाने के लिए, रजोगुण में लाने के लिए वो तमोगुण के शास्त्रों का लाभ होता है। कुछ शास्त्र होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, वो रजोगुण के लोगों को सत्वगुण में लाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं वो जो सत्वगुणी होते हैं, वो जो लोग सत्वगुण में हैं उनको सत्वगुण से ऊपर उठाकर दिव्य गुण में डालने के लिए वो शास्त्र जरूरी है। और कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो दिव्य गुण में जो जा चुके हैं उनको भगवान तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग होता है। तो जो दिव्य गुण वाले शास्त्र हैं वो है भगवद गीता, साक्षात भगवान ने उसको बताया है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु, फिर उपदेशामृत, ईशोपनिषद, श्रीमद् भागवतम, और इन सब में से भी श्रीमद् भागवत जो है वो सबसे उच्च है। जैसे अगर कोई पेड़ हो तो पेड़ में पहले हम लोग कुछ लगाते हैं, बीज डालते हैं, बीज के बाद में फिर कुछ अंकुर आता है, कुछ मूल जो जड़ है वो निर्माण होती है, फिर थोड़ा और उठता है, 2-4 ब्रांच हो जाती है, फिर और जड़ बढ़ जाती है, और धीरे धीरे करके बहुत शाखा हो जाती है, फिर पत्ते आ जाते हैं, फिर फूल आ जाते हैं, और आखिरी बार क्या आता है लास्ट में? हाँ, पेड़ का, वृक्ष का सबसे आखिरी प्रोडक्ट क्या है? हम लोग एग्री ना इसके ऊपर, फल जो है वो सबसे लास्ट पेड़ पे आता है। और ऐसे कहा गया है कि आप पौधा शाखा ब्रांच पत्ते नहीं खा सकते, फूल भी नहीं खा सकते, लेकिन फल खा सकते हैं। और उस पेड़ के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो आपको फल के रूप में मिल जाती है, और पेड़ की कोई वस्तु आप खा नहीं सकते लेकिन फल को आप खा सकते हो, पंछी भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकता है। तो पेड़ जो है अपने पास जो बेस्ट है वो फल के रूप में आपको प्रस्तुत करता है। ये पेड़ की आपके लिए भेंट है, अपना बेस्ट जो है वो, जैसे आपके घर में कोई अच्छा मेहमान आया तो आपको सबसे बेस्ट क्या बनाने को आता है वो आप बनाते हो। मैं बेस्ट किस में हूँ? खीर बनाने में बेस्ट हूँ, तो मैं खीर बनाऊँगी। जो मुझे अच्छी तरह से आता है और मैं समझती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा बनाने को आता है वो हम बनाते हैं। वैसे पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो हमारे तुम्हारे लिए अपना बेस्ट जो है वो फल के रूप में आपको देते हैं। तो वैसे ही जो ज्ञान रूपी पेड़ है, अगर ज्ञान को हम लोग पेड़ के रूप में समझेंगे तो उस पेड़ के अंदर जड़ भी है, शाखा भी है, पत्ते भी हैं, अंकुर भी है, हाँ पुकेसर भी है, फूल भी है और लास्ट में फल है। तो ज्ञान रूपी वृक्ष पर अगर कोई फल है तो वो श्रीमद् भागवत है। ज्ञान रूपी फल का जो सार है, जो बेस्ट है उसका, वो फल के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गया है। ऐसा श्लोक भी है भागवत में कि ज्ञान रूपी वृक्ष पर आया हुआ है सर्वोच्च फल है और सबसे आखिरी फल है। फल के बाद में कुछ आता है क्या उसके अंदर? नहीं, फल के बाद में आगे आगे कोई प्रोडक्शन नहीं है, लास्ट फल है। तो इसकी कहानी ऐसी है कि एक बार, आपने महाभारत देखा है? कितने लोगों ने महाभारत देखा है आपको पता है? उसमें देखो महाभारत सबने देखा है टीवी पर, अच्छा है, गुड, थैंक यू टू बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा का धन्यवाद है, जो लोग महाभारत नहीं पढ़ते हैं उनको उन्होंने पिक्चर पे दिखाया सब लोग बैठ के देखने के लिए। हाँ 88 साल से चल रहा है, आप में से बहुत लोगों का जन्म भी नहीं होगा उसमें, तब वो चालू हुआ था 88 में, कई साल तक चला वो, बाप रे बहुत साल तक चला, कितने एपिसोड हो गए पता नहीं उसमें। तो उसमें एक थी सत्यवती, याद है आपको सत्यवती? कौन थी वो सत्यवती? शंतनु की पत्नी। उसके पहले कौन थी वो? उसके पहले कौन थी, उसकी पत्नी बनने के पहले? हाँ मत्स्यगंधा, दाशराज की कन्या थी वो, और वो बोट चलाती थी, प्रवासी को यहाँ से वहाँ छोड़ती थी, वहाँ से यहाँ लाती थी। तो एक बार जब वो बोटिंग कर रही थी तो एक ऋषि उसके बोट पर प्रकट हो गए, किनारे से नहीं आए, अपने आप बीच में जब उसकी बोट गई उसे प्रकट हो गए, और ऋषि ने एक ऐसा बड़ा बादल बना दिया, पूरा सब कुछ बंद कर दिया बादल के हिसाब से, मनो एक ऐसा एक महल बना दिया बादल का, जिसके अंदर केवल वो और मत्स्यवती, मत्स्यगंधा सत्यवती, और उसमें से उसका ऋषि का नाम था पराशर मुनि। वो पराशर मुनि बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में वर्णन दिया है, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनका उन्होंने वर्णन किया अपने पराशर संहिता में। संक्षेप में कहा जाए तो एक बड़े संत थे वो। तो पराशर मुनि ने भगवान के आदेश पर सत्यवती से उधर ही उधर पुत्र उत्पन्न किया, ऐसा नहीं कि 9 महीने प्रेगनेंसी फिर डिलीवरी, ऑन द स्पॉट उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, और उस पुत्र का नाम है व्यास मुनि। और व्यास मुनि कौन है? भगवान के ज्ञान के अवतार हैं, भगवान के अनेक ऐश्वर्य हैं, शक्ति है, हाँ और सौंदर्य है और विरक्ति है और ये ज्ञान भी है, और कौन से हैं? वैराग्य है, और कौन सा ऐश्वर्य है? एक सुंदरता हो गई, एक बल हो गया, एक ऐश्वर्य है सब ये, सुंदरता, बल, ज्ञान, वैराग्य और हाँ धन, मतलब संपत्ति, वेल्थ, वेल्थ और वैराग्य हो गया, और एक बच गया यश, यानी कीर्ति, फेम, भगवान का यश। ये 6 भगवान के ऐश्वर्य है, उसमें से एक ऐश्वर्य है ज्ञान। भगवान का ज्ञान जो है वो अनलिमिटेड है, वो ज्ञान का अवतार बने व्यासदेव, मतलब भगवान के व्यक्तित्व का एक अंश लेकिन अनलिमिटेड, वो ज्ञान के अवतार थे व्यास मुनि, जो पराशर और सत्यवती के बालक के रूप में जन्म हुआ, जन्म होते ही वो जंगल में चले गए, साधु संत बन गए। वो उनका जन्म जो था वो द्वापर के अंत में और कलयुग के शुरुआत में हुआ था। तो उनको भगवान का आदेश था कि जितने भी शास्त्र है वो सबको लिखो, और कारण क्या है? जो लिखते हैं तो याद रहता है। अब मैंने जो कुछ बताया आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, हाँ हाँ, कल पूछेंगे क्या बताया था, याद नहीं, कल पूछूंगा भागवतम क्या है, पता नहीं। तो ऐसे कहा गया है कलयुग में अगर कुछ याद रखना है तो लिखना होगा, नोट्स बनाना होगा, एग्जाम में प्रश्न आने वाला है तुरंत आप नोट बनाएंगे, उसका आंसर देना है ना अपने को, तुरंत नोट बनाएंगे, एग्जाम में आने वाला है, टॉप क्वेश्चन में आएगा, हॉट फेवरेट क्वेश्चन में आएगा, तुरंत लिखेंगे हम, बाकी कुछ लिखेंगे नहीं, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं, ऑप्शन में डाल सकते हैं, है ना, ऐसा होता है ना आपके अंदर, अरे ये ऑप्शन में डालने का है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है, इसको अंडरलाइन कर लाल लाइन से। तो कलयुग के अंदर लोगों को याद नहीं रहती है, सबसे एक बड़ा एक कलयुग का दुर्गुण है, अनेक दुर्गुण में से, कि लोगों को याद नहीं रहता। हाँ प्रभु जी सुन रहे ना आप, क्या होता है कलयुग में? आप शरीर से यहां पर है, मन से कहीं और है, तो कैसे होगा? ये व्यास लोगों को पता था कि ऐसे लोग बताते रहेंगे, लोगों का मन कहीं और रहेगा तो कैसा समझेगा उनको, कैसा याद आएगा? उन्होंने बोला लिखो उसको, मैं लिखूंगा तो मैं जाने के बाद भी लोग पढ़ते रहेंगे उसको और भूल नहीं जाएंगे। इसलिए जहाँ शरीर है वहीं मन को रखो, और जहाँ वो चल रहा है उसी को सुनो, उसका लाभ हो सकता है। तो व्यास देव ने ये समझा कि आगे जाकर लोगों को याद नहीं रहने वाला है। अभी कलयुग आने वाला था, अभी तक आया नहीं था, लेकिन वो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते थे। वो आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है, सब जानते थे। तो आगे क्या हो रहा है उनको दिखाई पड़ा कि ये सब लोग भूल जाने वाले हैं, कुछ याद नहीं रहेगा। 5 साल की उम्र में बर्थडे था आपका, उस बर्थडे में क्या खाया था आपने? कैसे याद रख सकते? रविवार को लंच में क्या खाया था? नहीं याद आएगा। कल शाम को क्या खाया था डिनर में? सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसा हमारा मेमोरी है। हाँ, 2 दिन पहले क्या खाया था हमको याद नहीं, 2 दिन पहले कौन सा कपड़ा पहना था बताओ, वो भी याद नहीं आएगा। इतनी हमारी शॉर्ट मेमोरी है, वो इतना बड़ा वेद का नॉलेज हमको कैसे याद रहेगा? तो उन्होंने कहा लिखना चाहिए, उसके लिए लिखेंगे तो याद रहेगा। इसलिए प्रवचन में भी अगर आपको सोना नहीं है नंबर 1, और जो जगह रहकर जो सुना है उसको याद रखना है, तो क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। कितने लोग लिख रहे हैं? 1 या 2, बाकी सब लोग बैठे हैं आराम से, टेक के बैठे हैं। कुछ देर के बाद नींद आएगी बढ़िया से, एकदम फर्स्ट क्लास। हरे कृष्णा। वैसे भी थके हुए हैं, यहाँ वहाँ मन भटक रहा है, थोड़ा तो अच्छा कथा चल रही तो मन शांत होता है, शांत मन होते ही तुरंत नींद आ जाती है। हमको बताया था बहुत लोगों ने, कई प्रश्न पूछा, मुझे कथा में ये नींद कैसे आती है? दिन भर टीवी में सीरियल चल रहा है, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, क्या मालूम था, आई डोंट नो, अभी नींद नहीं आती है। हाँ, 16 पिक्चर चल रहा है अमिताभ बच्चन का, और हाँ नींद आती है, वो 3-3 घंटा रात को 2 बजे तक देखते हैं, थके हुए फिर भी जग रहे हैं पूरे। हाँ, लेकिन कथा शुरू होती है तो नींद आती है। तो एक कथाकार ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोलते हैं बाकी सब जो होता है ना वो एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट, एक्शन, इमोशन, हाँ गुस्सा, ये वो सब होता है, इमोशन वगैरह, तो उसमें नींद उड़ जाती है। और जो थका हुआ मन है, वो जो पीड़ित मन है, जो कष्ट प्राप्त कर चुका है, वो जैसे ही कथा में आता है भगवान का विषय शुरू होते ही मन शांत हो जाता है। जैसे मन शांत हो जाता है तो थकान जो है वो बोलते है, अभी तो सो जा, इतना बढ़िया सोने का मौसम और कोई अच्छा नहीं। मन शांत होने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। तो बहुत लोग कथा में आते हैं अच्छी नींद निकालने के लिए। ऐसा है। तो व्यासदेव ने सोचा कि उसको लिखना चाहिए। तो व्यासदेव अपने गुरु महाराज नारद मुनि, कौन गुरुदेव है उनके, व्यासदेव के? यस, नारद मुनि। नारद मुनि किसके गुरु शिष्य हैं? अभी बताया नारद जी के शिष्य व्यासदेव हैं, अब बोल रहे व्यासदेव के गुरु, क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं आपका टीचर हूँ, और बाद में बोलते हैं मैं आपका विद्यार्थी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि हैं, नारद के शिष्य व्यासदेव हैं। तो नारद जी ने उनको आदेश दिया, जाओ सब शास्त्र लिखो। तो व्यासदेव जी गए हिमालय में, उनकी वहाँ एक गुफा है व्यास गुफा नाम की, हम लोग गए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो व्यास गुफा में बैठकर उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गणेश जी को बुलाऊंगा। तो उन्होंने गणेश जी को आह्वान किया, गणेश जी वहाँ पर आए, उन्होंने कहा क्या सेवा करूँ आपकी? तो उन्होंने कहा कि आप लिखो, जो मैं बताऊँगा उसको लिखते जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन रखा उन्होंने कि जो मैं बताऊँगा वो समझ में आएगा तो लिखना उसको, मतलब जब तक समझ में आएगा लिखेगा तब तक वो आगे का सोच सकते हैं कि आगे क्या बोलना है। इसलिए उन्होंने व्यासदेव ने श्री गणपति जी को कहा कि आप भी आ जाओ और मैं जो कहूँगा वो आपको लिखना है। तो व्यासदेव ने कहा और गणेश जी ने उसको उतारा। एक गुफा व्यास गुफा है, एक गणेश गुफा है, थोड़ी दूर है। तो आप बोलेंगे आवाज़ कैसे आया उनको वहाँ से, ये हमारे जैसा कनेक्शन नहीं है उसके अंदर, ये हृदय की बातें हैं, हृदय से हृदय तक पहुँचती हैं। तो वैसे फिर पूरा शास्त्र लिखा। अभी जब गुरु जी की आज्ञा कोई पूरा करता है ना तो आदमी को संतुष्टि प्राप्त होती है। जब कोई भी गुरु जी की आज्ञा पूरी करता है तो मन में शांति आनंद प्राप्त होता है। तो इतना सब लिखने के बाद भी व्यासदेव को मनस शांति प्राप्त नहीं हुई। उनके मन में प्रश्न, वो तो ज्ञानी थे, बहुत स्वयं ज्ञान के अवतार थे वो, उनको पता था कि मैंने गुरु जी की आज्ञा पालन किया लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, कारण क्या उसका? कुछ ना कुछ मेरे काम में त्रुटि, कुछ कमी, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा में एक नियम भी होता है, अगर बाजू वाला सोता होगा तो उसको जगाना चाहिए। प्रभु जी कथा चल रही है भगवान की, भगवान के विषय में बातें हो रही है, कान को खोल कर सुनना चाहिए, क्योंकि ध्वनि के रूप में भगवान अपने भक्तों को अपना ज्ञान देते हैं। तो उनको, वो ज्ञानी थे स्वयं, उन्होंने समझ गए कि मेरे सेवा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो उदास होकर नदी की, उसका नाम था सरस्वती, उस नदी के किनारे बैठ गए और मन ही मन में अपने गुरु को आह्वान करने लगे, महाराज जी, गुरु जी महाराज, बताइए मेरे सेवा में क्या त्रुटि है, क्या कमी है, ऐसी क्या बात है जो मैं सेवा करने के बाद भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, क्या गलती है उसके अंदर। ऐसे मन में प्रार्थना कर ही रहे थे दुख में बैठकर, तो नारद मुनि वहाँ से अवतरित हुए और नारद मुनि ने कहा, अरे तुम तो बड़े ज्ञान के अवतार हो, वो तो पता होना चाहिए क्या वजह है, ऐसे मजाक किया उन्होंने थोड़ा सा। बाद में गंभीर होकर उन्होंने कहा कि तुमने इतना सारा शास्त्र लिखा, सिद्धांत लिखा, फिलॉसफी लिखी, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं किया तुमने। कितना भी शास्त्र आप लिखेंगे, कितना भी मुंह से बोलेंगे, अगर साथ में भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो सारा लिखना और सारा बोलना व्यर्थ है। जब तक तुम भगवान का गौरव नहीं करते तब तक पूरा तुम्हारा लेखन जो है वो भी व्यर्थ है। इसलिए अभी जाओ और भगवान के विषय में गुणगान करो, भगवान के भक्तों के विषय में गुणगान करो, भक्ति इस विषय पर वर्णन करो कि भक्ति क्या वस्तु होती है, उसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन वर्णन करो उसका। तो व्यासदेव प्रसन्न होकर गए गुफा में वापस, उन्होंने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम। लास्ट जो ग्रंथ लिखा उन्होंने उसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये वेदों का सार है, वेद रूपी वृक्ष का जो सार है, जो हमको समझना चाहिए वो ये है। और कितने श्लोक लिखे हैं उसके अंदर, किसको आइडिया क्या? हरे कृष्णा, 18,000, 24,000, 9,000, 11,000, एग्जैक्टली बताओ कितना हजार लिखा? हाँ, 18,000 में कितने लोग बोलते हैं? 9,000 में कितने लोग हैं? 9,000। 11,000 में कितने लोग हैं? 24,000 में कितने लोग हैं? सोचो अभी भी बराबर से, वो बड़ा शास्त्र है वो। एनीवेज 18,000 उत्तर सही है। ये ऐसा क्यों बता रहे हम? ताकि आपको याद रहेगा, एक लाइन में बोल देंगे तो आप भूल जाएंगे उसको, दो चार घुमा कर बताएंगे तो आपको याद रहेगा उसको। तो 18,000 श्लोक लिखे, उसमें सबसे पहले उन्होंने भक्तों का चरित्र का वर्णन किया, जैसे ध्रुव का चरित्र वर्णन किया, प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया, कुंती देवी का चरित्र वर्णन किया, पांडवों का चरित्र वर्णन किया, प्रभु रामचंद्र का रामायण का हिस्सा भी वर्णन किया, हाँ, और जमदग्नि महाराज का कथा वर्णन किया, परशुराम जी का कथा वर्णन किया, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि अच्छे अच्छे भक्तों का कथा उन्होंने वर्णन किया। 9 स्कंद उसके 12 पार्ट है पूरे, 12 स्कंद बोलते हैं उसको, 9 स्कंद तक उन्हें सारे भक्तों का कथा वर्णन किया, और 10वें स्कंद में उन्होंने कृष्ण का चरित्र वर्णन किया, कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी जितनी कथाएं हैं सब एंड तक सब उन्होंने वर्णन किया उसके अंदर। उसके बाद 11वें 12वें स्कंद में उन्होंने क्या वर्णन किया, कलयुग के लक्षण क्या है, कलयुग में क्या क्या होने वाला है, आज जो कुछ हो रहा है ना अपनी दुनिया में वो सबका वर्णन भागवत में दिया हुआ है, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, लोग ड्रग एडिक्ट बनेंगे उसका वर्णन भी दिया है। ये भी लिखा है कि कलयुग में माता अपने बालक का वध करेगी, आप लोग मानते हैं इस बात को? कैसे मानते बताओ? एबॉर्शन, एबॉर्शन का मतलब क्या है, माता अपने ही बालक को मार देती है अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए, अपने धन के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए, अपने करियर के लिए, अपने इसके लिए, अपने उसके लिए, अपने ही प्रेम के बालक को पेट में डॉक्टर के पास जाकर ख़त्म कर देती, टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक देती। इसका वर्णन 5,000 साल पहले व्यासदेव ने भागवत में लिखा है, बोलो आप अभी। उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, भविष्यकाल में क्या होने वाला है आगे जाकर सबको पता चलता है, उनको कितने भक्त होते हैं वो, संत होते हैं। और भी बहुत सारा लिखा है, लोग ड्रग एडिक्ट बनेंगे, और आगे जाके लिखा है कि ऐसा काल आएगा कि आकाश में बादल होंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी, भूमि होगी लेकिन भूमि से फसल नहीं निकलेगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, उसका कुछ कुछ परिणाम तो हम देख रहे हैं ना अभी। हमारे बचपन में तो कोई पीने का पानी खरीदना ऐसा कोई विचार ही नहीं था, अभी हम लोग बिस्लेरी बोतल खरीदते हैं। हम लोग ट्रेन में भी उतर कर आराम से नल से पानी निकाल कर पीते थे और आराम से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है 10 रुपये की, 15 रुपये हो गई, 15 से 20 रुपये हो गई है, और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सब लोग गरीब लोग भी बोतल लेके घूमते हैं यात्रा में, पिकनिक में, सफ़र में, सब लोग लेते हैं, रेल पानी, नीर पानी सब लेते हैं। हाँ, अभी ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हवा अशुद्ध है, तो कई जगह सिलेंडर लगा के लोग चलते हैं। ये सब भागवत में दिया हुआ है 11-12 स्कंद में। तो एक जीवन का परिपूर्ण गाइडेंस है ये पूरा श्रीमद् भागवत। और ये भागवत में दशम स्कंद में पूरा कृष्ण का चरित्र वर्णन किया है। और ऐसे कहा गया है कि जब कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर लीला करके अंतर्धान हो गए तो श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। इसकी कहानी क्या है? कहानी इसकी ऐसी है कि राजा परीक्षित, आपने सुना होगा राजा परीक्षित, कौन है ये राजा परीक्षित? अरे सबने महाभारत देखा ना, अभिमन्यु जब मर गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसके पेट में कौन था? परीक्षित राजा। उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया ना, ब्रह्मास्त्र, तो वो दौड़ के आई भगवान के पास, भगवान मुझे बचाओ। तो भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश किया, इतना अंगूठी जैसा आकार प्राप्त करके, पूरे ऐश्वर्य के साथ, गदा चक्र धन पकड़ के, शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के, पूरे ऐश्वर्य के साथ पीताम्बर पहन के अंदर प्रवेश किया और गदा से वो ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया उसने, और छोटे से गर्भ को बचाया। उस समय इस गर्भ ने भगवान को देखा, अरे ये कौन व्यक्ति है, इतने बड़े संकट से मुझे बचा लिया गर्भ के अंदर ही। और जीवन भर जन्म होने के बाद में उसको ढूंढते रहे, वो कौन है वो, हर एक आदमी को देख के, ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, इसलिए इस नाम क्या पड़ा? परीक्षित। हर एक व्यक्ति की परीक्षा करते रहे वो, कि जिसको मैंने देखा था अंदर वो तो नहीं है, लेकिन वो बाहर आने के पहले कृष्ण का लीला समाप्त होकर अपने धाम में चले गए थे। तो ये परीक्षित महाराज जब छोटे से थे तब भगवान अंतर्धान हो गए, तो पांडव लोग दुखी हो गए बहुत, अरे भगवान के बिना राज्य करके क्या करना है, बड़े हमको राज्य से मोह है, भगवान थे इसलिए हमको भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान चले गए तो राज्य करना क्या है, तुरंत राज्य को त्याग कर दिया। मतलब उनके लिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं था, बोले अच्छा हो गया, अभी इतना तकलीफ था, बहुत दिन से तकलीफ उठाया, जंगल में रहे, इधर रहे उधर रहे, अभी इतने दिन के बाद में राजा बने, चलो थोड़ा एंजॉय कर लो, भगवान गए तो क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम तो मिलना चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। ऐसा हम लोग सोचेंगे कि उनको जाना था, चले गए बेचारे, वो क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, व्हाट आई कैन डू, मैं तो राजा बन गया हूँ, मेरे को थोड़ा सा अभी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। नहीं, ऑन द स्पॉट उन्होंने राज्य को त्याग कर दिया, तुरंत राजवस्त्र को उतार दिया, उत्तर दिशा की ओर चले गए सब लोग, द्रौपदी को लेके, पंच पांडव, कुंती, सब लोग चले गए। तो इतने से बालक को सिंहासन पर रखा उन्होंने, और ऋषि मुनियों को बताया कि जब तक ये बड़ा ना हो जाए आप लोग राज्य संभालो, जब बड़ा हो जाए इसको ट्रेनिंग दे दो, ये राजा बनेगा। तो परीक्षित बड़ा हो गया संतों के संग में और फिर बड़ा राजा बन गया। ऐसे फिर उसका अध्याय से अध्याय वर्णन है, एक अध्याय तो पूरा परीक्षित महाराज के ऊपर दिया गया है कि परीक्षित के अंदर कितने अच्छे गुण थे, सभी पांडवों के सभी अच्छे गुण एक व्यक्ति के अंदर विराजमान थे, सभी देवताओं के गुण भी उसके अंदर विराजमान थे, एक व्यक्ति के अंदर सभी देवताओं के अपनी पांचों दादाओं के गुण उसके अंदर उपलब्ध थे। ऐसे उसका वर्णन किया है कि राजा होने पर वो राज ऋषि था, वो राज ऋषि, राजर्षि, ऐसा राजा उसके राज्य में, ऐसे कहा गया है कि ऐसे वर्षा नहीं हुआ करती थी, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पानी भर रहा है, कोई मर रहा है, किसको शॉक लग रहा है, किसको बिजली गिर गई है, किसका क्या हो गया, बच्चा बह गया, कोई गटर में फर कर गटर में गिर गया, पानी में पता नहीं गटर कहाँ था, वो कहाँ था, वो गटर में बह गया पता ही नहीं लगा, ऐसे वर्षा नहीं हुआ करती थी। वो राज ऋषि इतने महान थे कि उसके प्रभाव से केवल रात में वर्षा हुआ करती थी, जितनी ज़रूरत है उतनी, ऐसा नहीं कि तानसा विहार पवई सब भर के बह रहे हैं फिर भी वर्षा हो रही है हमारे यहाँ पर, और ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर एक बूंद भी वर्षा नहीं गिरी है, अकाल पड़ा हुआ है, 10 दिन में एक बार 1 घंटा पानी मिलता है, ऐसा नहीं हुआ करता। क्यों ऐसा हो रहा है आजकल? क्योंकि जो राज्य चला रहे हैं वो सब पापी और भ्रष्ट हैं, उनके पाप और भ्रष्ट की वजह से राज्य में ये अनाचार बढ़ रहा है। जब राजा पापी बनता है, राज्य करने वाला, उसके पाप की वजह से प्रजा को उसका दुख भोगना पड़ता है। जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अनाचार करते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, चूसते हैं, हाँ, घपला करते हैं हजारों लाखों रुपयों का, उसकी वजह से राज्य में वर्षा गर्मी सबका गणित बदल जाता है और जनता त्रस्त होती है। कई जनता त्रस्त है अधिक पानी की वजह से, कई जनता त्रस्त है पानी नहीं होने की वजह से, कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं पर और कुछ सुनामी हो रहा है, कभी कुछ और कुछ हो रहा है। निसर्ग जो है अपने पापों का फल इकट्ठा लोगों को देता है होलसेल में, क्योंकि जब वर्षा होती है तो केवल मैं ही नहीं, आप सब लोग परेशान हो जाते हैं एक ही साथ में, है ना, होलसेल परेशानी अधिक वर्षा से या न वर्षा होने की वजह से। तो परीक्षित राजा के संत होने की वजह से उस समय उसके भक्ति की वजह से प्रजा के पूरे विश्व में, मतलब जहाँ पर भारत के राजा नहीं थे, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, वो पूरे विश्व के राजा थे, देवता भी उसका आदर करते थे। ऐसे आर्यावर्त के राजा थे, पूरे आर्यावर्त में केवल रात को जब लोग सोते थे तब पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुआ करती थी और दिन में कभी भी वर्षा नहीं होती थी और हमेशा खेत हरे भरे रहा करते थे। पर्वतों में से रत्न जड़ी बूटियां निकलती थी, समुद्र में से मोती निकलते थे, ऐसे हर चीज़ से हर वस्तु प्राप्त हुआ करती थी। फिर भी वो रात को बेस बदल कर राज्य में गश्त लगाया करते थे, विजिलेंस, कोई दुखी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, मतलब मेरे में कुछ गलती है तो कुछ तो बोल तो नहीं रहा है, तो वो उसके लिए भेष बदल कर गश्त लगाते थे। तो एक बार गश्त लगा रहे थे तो क्या हुआ, एक काला सा आदमी, लंबा और चौड़ा, राजा का मुकुट पहना हुआ, एकदम काला, तलवार निकाल कर एक बैल के पैर पर आघात कर रहा है और बैल पर तलवार से पैर से आघात करके तीन पैर काट दिए उसने, और एक पैर को और काटने जा ही रहा है तो वो बैल कांप रहा है ऐसे 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 डर के मारे, और ये दुष्ट आदमी बैल के पैर काट रहा है। तो उस समय तुरंत राजा परीक्षित जो है तलवार निकाल के उस पर आक्रमण करते हैं, तो रुक जाओ, अभी तुम्हारा शिरच्छेद कर देता हूँ। तो व्यक्ति तुरंत राजा के चरणों में गिर गया कि हे राजा, मैं भी आपका प्रजा हूँ, मुझे मत मारो, मुझे सहारा दो, मुझे जगह दो रहने के लिए। क्षत्रिय का एक नियम होता है, क्षत्रिय का अगर कोई शरणागति लेता है, आई सरेंडर प्लीज़ हेल्प मी, तो वो नहीं मारेगा उसको, शरणागत आदमी को वध करना मना कर दिया गया है, तो वो गुनहगार है। लेकिन उन्होंने तुरंत राजा की शरणागति ले ली, तो राजा भी समस्या में आ गया, भाई इसको मारूं कैसे। राजा को बोला वो आदमी कि मैं भी आपका प्रजा हूँ और तुम कौन हो, तो मैं कली हूँ, मेरा आने का समय हो गया है, जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर। तो नहीं, मैं आपका प्रजा हूँ, मेरे को जगह दो, आप राजा है हमारे, पिता समान है, आपको हमको जगह देना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि जाओ, जहाँ पर भी प्राणियों की बिना जरूरत की हत्या होती है वहाँ चले जाओ, जहाँ पर विवाह के बिना पति पत्नी संबंध करते, पति मतलब आदमी औरत संबंध करते हैं विवाह के बगैर, विवाह के बाहर व्यभिचार करते हैं, वहाँ पर चले जाओ। जहाँ पर लोग नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, अफीम पीते हैं, वहाँ पे चले जाओ। और जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं, भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ धन जो है वो जुए में उड़ा देते हैं, ऐसी जगह पे चले जाओ, वहाँ पर अपना निवास ढूंढो। तो तुरंत कली चला गया अपना आसरा ढूंढने के लिए, पूरा विश्व में भ्रमण किया उसने, वापस लौट के आया राजा के पास। राजा, आपके पूरे राज्य के अंदर एक भी जगह नहीं है जहाँ पर व्यभिचार होता है, विवाह के बाहर कोई संबंध करता है या नशा करता है कोई, या जुआ खेलता है, या कोई बिना कारण किसी जानवर की हत्या करता है, कोई मांस नहीं खाता है पूरे राज्य के अंदर। कैन यू इमेजिन, अभी अपने कोई घर के अंदर कोई मिलता नहीं ऐसा नहीं करने वाला, हर एक घर के अंदर सब मिलता है, व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला, नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, वो पूरे राज्य के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नहीं मिला उसको जगह कोई ऐसा। लौट के आया, प्रभु जी जगह ही नहीं रहने के लिए, आपने तो एड्रेस दिया लेकिन एड्रेस कहीं मिला ही नहीं, वो अपने एड्रेस दिया था ना कि जहाँ पर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा एड्रेस कोई है ही नहीं बोलते पूरे वर्ल्ड में, आपके आपके राज्य में कोई जगह ही नहीं ऐसी, तो मैं कहाँ जाऊँ। मतलब क्या समझ गए आप कि ये चार नियम तोड़ने वाले वहाँ पर कोई लोग नहीं थे दुनिया में उस समय, नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज ईटिंग मीट मांस खाने वाला, जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला और शराब पीने वाला पर कोई नहीं था। इतना पवित्र राजा थे वो। राजा ऐसा था इसलिए प्रजा भी इतनी सद्गुणी थी। जैसे राजा वैसी प्रजा, ऐसी कहावत है मराठी में, हिंदी में। तो फिर दो बार लौट के आया, अभी कहाँ जाऊँ मैं? तो राजा बोले, जिस जगह पर जरूरत से अधिक धन संचय करके रखा हुआ है वहां पर चले जाओ। धन दौलत तो बहुत थी उस समय राज्य में, सबके घर में इतना धन दौलत थी, समृद्धि थी, इतनी विकास सब जगह हुआ था। तुरंत जहां पर जरूरत से अधिक धन अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करके रखा था वहां कली ने अपना प्रवेश किया। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि हमारे पास अगर हमारे स्वार्थ के लिए जरूरत से अधिक धन हमने जमा करके रखा है तो वहाँ पर कली निवास करेगा। इसलिए सबसे अधिक झगड़े कहाँ होते हैं? पैसे की वजह से होते हैं, है ना। बाकी माँ की सेवा कौन करेगा? मैंने करने को नहीं दिया, तुमने क्यों किया? मुझे सेवा करना था माँ की। झगड़ा इसलिए होते क्या? नहीं होते। माँ का पैसा तुमने कितने लिया, मुझे कितना क्यों दिया? माँ की प्रॉपर्टी से तूने कितना लिया, मुझे कितना दिया? ये पैसा जो है, धन दौलत संपत्ति जो है, इस पर कलयुग में सबसे अधिक झगड़े होते हैं। क्योंकि कलह यानी कि झगड़ा वहाँ होता है जहाँ पर धन दौलत ज़्यादा होती है, सबका ध्यान उस पर होता है। धन दौलत कहाँ पर है? वहाँ पर कली का निवास है। और जो पैसे के व्यवहार में आ जाता है वहाँ पर झगड़े हो जाते हैं। कभी भी देखो आप पैसे से बाहर हो तो आपके झगड़े नहीं होंगे, आपको पैसे में इंटरेस्ट है तो झगड़ा होगा। हर जगह पर अशांति, झगड़ा, असंतुष्टि सब वहाँ होगी जहाँ पर पैसा का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे धन दौलत का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए क्या होता है, जब आदमी गरीब होता है बहुत दिलदार होता है, वो खाने बुलाएगा आपको, घर पे रहेगा, आपके साथ घूमेगा, आपके लिए खर्चा भी करेगा। अमीर बनेगा तो वो कंजूस बनेगा, जब तो गरीब रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, दिलदार रहेगा, कोई देने में तो कष्ट नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा मोह बढ़ेगा उसका, अरे इतना मेरा मैं क्यों दूँ तुमको, तो और कंजूस बनेगा, लोगों से दूर चला जाएगा। जब पैसा बीच में आता है लोग दूर चले जाते हैं, जब पैसा नहीं रहता है लोग पास में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तब से फिर कलयुग का आरंभ हुआ और जहाँ जहाँ धन ज़्यादा इकट्ठा होने लगा वहाँ कलयुग बस गया। तो एक दिन ये राजा अपने ऐसे गश्त में चल रहे थे, तो ये राजा बड़े पावरफुल थे, उनको भूख प्यास सब में कंट्रोल था, नींद भूख प्यास धन का लोभ नहीं था, बड़े ज्ञानी थे, खाने पीने पर भी कंट्रोल था उनका, एकदम बहुत महात्मा थे वो। तो एक दिन वो शिकार में गए थे तो जंगल में उनको प्यास लगी, कभी उनको प्यास से परेशान नहीं किया, लेकिन उस दिन प्यास से परेशान हो गए वो। एक ऋषि के आश्रम में गए जंगल में ढूंढते ढूंढते, कहीं पानी मिलेगा पीने के लिए, तो पानी मांगा उन्होंने ऋषि से। तो ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, अभी हम लोग ध्यान करते तो कैसे करते हैं, हम भी मग्न हो जाते हैं, कैसे, नींद में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 10 मिनट के बाद में कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में ये हमारा ध्यान है। ये ऋषि का नाम था शमीक ऋषि, ये ध्यान में इतने मग्न हो गए थे, शरीर का बंधन भी भूल गए, शरीर के परे पहुंच गए, भगवान के विचार में इतने मग्न हो गए कि उनको बाहर का भान ही नहीं रहा, कोई है कोई नहीं है क्या है कुछ पता ही नहीं उनको, पूरे ध्यान में मग्न हो गए वो। तब ये पहुंचे वहां पर पानी मांगने के लिए, इनको पता था कि राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, राजा परीक्षित महाराज, विश्व के राजा, पानी मांग रहे प्यास की वजह से, तो ऋषि को तुरंत पानी देना चाहिए। अरे जिस दुनिया को चलाने वाले सम्राट राजा जो है वो आपके दरवाजे पे आए हैं, पानी मांग रहे, कितने भाग्य की बात है, तुरंत पानी देना चाहिए उनको। लेकिन ऋषि को सुनाई नहीं पड़ रहा था, वो ध्यान में मग्न थे, वो कई बार पुकारा, महाराज जी प्यास लग रही है। तो जिस व्यक्ति को प्यास पर भी कंट्रोल है, क्रोध पर भी कंट्रोल है, सब चीज़ पर कंट्रोल है, उस दिन कंट्रोल गायब हो गया उनका, क्रोध आया, अरे इतने ऋषि मुनि मेरे वजह से यहाँ पर इनका भजन हो रहा है, मेरे राज्य में इतनी पवित्रता है, इतना वातावरण है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण निर्माण कर रखा है, कोई शराब नहीं पीता है, कोई नशा नहीं करता है, कोई जुआ नहीं खेलता है, सब पवित्रता निर्माण करके रखी है, इसलिए ये लोग भजन कर पा रहे हैं, और मैं इनके दरवाजे पर आया हूँ, मुझे पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो अचानक उनको गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से से क्या किया, एक मरा हुआ सांप को उठाया और साधु के गले पे डाल दिया, मतलब अपमान की तरह ना, अभी किसी को मेरे को भी गाला माला पहनाई तो मैंने ऐसा सूंघा उसको अच्छी तरह से, कोई आके सांप डालेगा मेरे गले में तो मैं क्या करूंगा, सूंघूंगा उसको बैठ के है ना, मतलब सांप डालना मतलब मेरा अपमान कर रहे हैं आप, माला मतलब मेरा सत्कार कर रहे हैं, तो माला नहीं पहनाया उन्होंने, सांप पहनाया, वो मरा हुआ सांप डेड, फिर भी साधु को होश नहीं आया, वो ध्यान में मग्न थी। लेकिन उस साधु का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी, क्या नाम था उसका, श्रृंगी पुत्र, 7 साल का था केवल, लेकिन जन्म से ब्राह्मण था वो ब्राह्मण पिता का शमिक ऋषि का ट्रेनिंग था उसको पूरा, बड़ी बड़ी पावर थी उसके अंदर, वो खेल रहा है कहीं दूर तालाब के किनारे बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ में खेल रहा है वो, लेकिन उसको इतना अंतर ध्यान था कि खेलते खेलते उसको ध्यान में ऐसा आया कि कोई मेरे पिताजी का अपमान कर रहा है, इतनी उसकी अंतर्बुद्धि हुई उसको, इतना सिद्ध लड़का था वो, और तुरंत उसको गुस्सा आया कि कौन है वो क्षत्रिय जिसने इतना अपराध करने की हिम्मत कर रहा है, वो मेरे पिताजी का अपमान कर रहा है, तो ना जाना कोई है क्या, समझा कोई किसने किया है, वो समझे जाने बिना उसने जनीब को निकाला, धागा तोड़ दिया, बोला और साफ दिया कि जिसने भी ये किया है 7 दिन के बाद सर्प पक्षी के बंच से मर जाएगा। सोचा नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों दिया, क्यों अपमान किया गया, कारण क्या था उसका, बैकग्राउंड क्या था उसका। हाँ, वो माता जी को जगाओ, वही हरि बोल, जितना दीवार का सहारा लेंगे उतना निद्रा देवता आपके ऊपर हावी हो जाएगी, ऐसा है वो। तो उसने ना देखा आगे पीछे और बिना सोचे किसको शाप दे रहा है, वो शाप दे दिया उसने। ऐसे कहते हैं कलयुग वहां इस्टेब्लिश हो गया जब ब्राह्मण लोगों ने अपने पावर का मिसयूज किया। ब्राह्मण लोगों का शाप देने की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि खड़े उठे बैठते सबको शाप देते रहे। हाँ, जो आपको लाइसेंस दिया गया है गन का, तो ऐसा मतलब नहीं कि सबको दे, जो मिलेगा उसको शूट करते रहे आप, वो दिया है कभी समय आएगा तो उपयोग करने के लिए दिया है आपको। तो शाप का भी ऐसा नहीं कि शाप देने की शक्ति, इसलिए जो मिलेगा तो थोड़ा आवाज़ किया तो चलो शाप दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जहाँ पर ज़रूरत है, और साधु लोग शाप भी देते हैं तो आदमी के भले के लिए देते हैं, उसका कल्याण करने के लिए देते हैं। ये तो गुस्से से शाप दे दिया, मतलब तमोगुण में शाप दिया उसने, सत्वगुणी ब्राह्मण होने के बदले उसने तमोगुण में क्रोध में शाप दे दिया। तो कहते हैं उसी से कलयुग का भ्रष्ट होना शुरू हो गया, जब ब्राह्मण वर्ग भ्रष्ट हो गया तो कलयुग आरंभ हो गया, बस गया ब्राह्मण कलयुग। तभी ब्राह्मण ने शाप दिया तो सत्य होना ही है, और वो शाप इतना भयंकर था कि उस शाप के उच्चारण करने की वजह से शमिक ऋषि का ध्यान भंग हो गया, इतना भयंकर शाप दिया उसने, इतना भयंकर शाप था वो। राजा परीक्षित जो राज ऋषि थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान के समान थे प्रजा के लिए, वो भगवान के लिए मतलब भगवान का प्रतिनिधि राजा होता है, प्रजा के लिए वो पिता समान होता है, सबको पिता समान पालता है, ऐसे सब प्रजा का पिता जो है उसको ऐसा भयंकर शाप दिया गया जवान राजा को। उसके उच्चारण करते ही ऋषि का ध्यान भंग हुआ, ऋषि की आंखें खुली, ऋषि भी अंतर्ध्यानी थे, जैसी आंख खुली सब प्रसंग समझ में आया उसको कि क्या हुआ। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने राजा का सत्कार नहीं किया, राजा मेरे दरवाजे पे आया, मैंने अपने कर्तव्य को मैं चूक गया, माफी मांगने के बजाय मेरे बेटे ने शाप दे दिया उसको। तुरंत बेटे को बुलाया और बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर, क्रोध किया उसके ऊपर, और राजा को भी जैसे शाप प्राप्त हुआ राजा को भी समझ गया, ऐसा नहीं कि बेटा ने आके राजा के पास आके शाप दिया, ऐसा नहीं, उसने वही शाप दे दिया, जिसने भी ये किया वो 7 दिन के बाद मर जाएगा। जैसे ही शाप उच्चारण किया राजा को भी समझ में आया कि शाप मिला है, और राजा के अंदर उस शाप को काटने की पूरी शक्ति थी, ऑन द स्पॉट वो शाप को काट सकता था अपने बल की वजह से। लेकिन राजा बड़ा ज्ञानी था, उसने विचार किया कि मुझे आज तक कभी प्यास के द्वारा कष्ट नहीं हुआ, आज तक कभी क्रोध नहीं आया, आज ये कैसे हुआ कि मुझे अचानक प्यास से मैं त्रस्त हो गया और क्रोध में आकर ऋषि का अपमान भी कर दिया, ये कैसे हो सकता है, और ये शाप भी आ गया उसके ऊपर 7 दिन के बाद मरने का, मतलब ये जरूर भगवान की इच्छा है, जरूर ये भगवान की इच्छा है। इसलिए गुस्सा न करते हुए, शाप को काटने का प्रयास न करते हुए तुरंत राज्य में चले गए, अपने दरबार में गए, मुकुट को उतार दिया, राजवस्त्र को उतारा, अलंकार को उतारा, सब कुछ उतार दिया, अधिकार छोड़ दिया, बोला मैं जा रहा हूँ, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, अब मैं सत्य की खोज के लिए जाऊंगा कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा है 7 दिन मिले, ऐश कर लो, जो प्रॉपर्टी है, जो जितनी पत्नियां हैं, जितना समृद्धि है, खाना पीना है, भोजन है, घोड़े है, सब लगता है, सब है, मजा कर लो, 7 दिन के अंदर मजा कर लो, बाद में मरना ही है, ये विचार उसके मन में नहीं आया। उसके मन में पहला विचार आया कि जो व्यक्ति 7 दिन के बाद में मरने का उसका नोटिस मिल चुका है, उसको क्या करना चाहिए 7 दिन के लिए, ये प्रश्न पूछने के लिए राज त्याग दिया उसने। कितनी बड़ी बात है सोचो आप। हम लोग को अपना एक घर छोड़ने को जाने को कितना कष्ट होता है, बोला 50 साल में लोन भर के बनाया घर मैंने, उसको कैसे किसी के नाम कर दूं। बोले पापा आप अभी तो जा रहे हैं, प्रॉपर्टी डिवाइड कर लो। बोले कैसे करूं, मैंने इतना मेहनत किया है, मुझे मरने दो पहले, उसके बाद में करूंगा आपके नाम पे। इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए, छोटा बैंक बैलेंस के लिए हम लोग इतना तरसते हैं। ये तो पूरे विश्व के राजा थे, वो मालिक थे, अनंत अनंत धन के राजा थे वो, इतना अधिकार था, इतनी पावर थी उसके अंदर, इतना आदर था, उनके देवता भी सम्मान करते थे उनका, इतना बड़ा पोजीशन उन्होंने एक झटके के अंदर छोड़ दिया, त्याग कर दिया तुरंत। वो नदी किनारे आए और ये शाप इतना भयंकर था कि इस शाप का ध्वनि सुनते ही सारे ऋषि जितने दुनिया में थे उनका भी ध्यान भंग हो गया। ऐसा भयंकर शाप कोई दे सकता है ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण है ये, किसका बालक है ये, कैसे इसके अंदर इतनी गुस्सा की है, कैसा उद्दंड बन गया है बालक, कैसे इतने बड़े व्यक्ति को शाप दे सकता है, पता है उसका परिणाम क्या होगा, राज्यहीन हो जाएगा, राजाहीन हो जाएगा, राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, राज्य का नाश हो जाएगा, शत्रु आएगा, राज्य को नष्ट कर देंगे। इतना समर्थ राजा को अगर शाप मिला ऐसे तो राज्य का कल्याण कैसे होगा। ये सब दुखी होकर सब लोग, मुनि भी वहां पर आ गए, ऐसा कहते हैं 88,000 मुनि वहां इकट्ठा हो गए राजा के पास। राजा राज्य छोड़कर गंगा किनारे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हजारों साधु मुनि चल रहे हैं, जहाँ क्या होगा आगे देखने के लिए, अभी कैसा होगा आगे देखने के लोग जा रहे हैं। और वहाँ से व्यास देव के पुत्र जो है सुखदेव मुनि वहाँ से आते हैं, वो भी बड़े संत हैं, उनकी बड़ी कहानी है। अपने माता के गर्भ में वो 18 साल तक रहे, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे, ब्रह्म ऋषि थे वो, उनको पता था दुनिया में जन्म लेना मतलब जन्म मृत्यु और चक्र के अंदर फंस जाना, इसलिए जन्म लेने को तैयार नहीं थे, वो बाहर ही निकलने रहे थे। देखो आप, आपके अंदर कोई माता है गर्भवती है और 9 महीना हो गया, 10 महीना भी हो गया, 11 महीना भी हो गया, इतना टेंशन की बात है, अरे जन्म नहीं हो रहा है, क्या बात है, उसका सिजरन कर दो, LSCS कर दो, ऐसा बोलेंगे ना आप। उस समय कुछ था नहीं LSCS वगैरह, तो पत्नी एकदम परेशान थी, पिता भी परेशान थे, तो उन्होंने अपने पत्नी को गर्भावस्था में भागवतम सुनाया, श्रीमद् भागवत जो लिखा ना उन्होंने खुद वो सुनाया, और बालक ने अंदर सुना, ब्रह्म ऋषि था वो, तब उन्हें जन्म लेने का तय किया और बाहर आया। वो जो बाहर आया तो हमारा बच्चा कैसे रोता रहता है, पता नहीं चलता कहाँ से क्या निकल रहा है, क्या साफ करना पड़ रहा है, क्या कुछ मालूम नहीं पड़ता है, बहुत टाइम लगता है समझने के लिए, है ना, क्या कहाँ से निकल रहा है समझ में नहीं आता है। तो ये जन्म लेते ही निकल गया सीधे, कोई इंटरेस्ट नहीं घर में माता पिता में, सीधा चला गया, और पिताजी भाग रहे उसके पीछे पीछे पीछे, अरे पुत्र कहाँ जा रहा है, घर पे रहो, हम आपके माता पिता है, रहो, उसको इंटरेस्ट नहीं, वो चला गया सीधा ही, ऐसे ही चला गया। आगे गया तो जंगल में उसको कुछ श्लोक सुनाई पड़े, कुछ बच्चे गा रहे थे, कृष्ण भगवान का वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण भगवान अपने साथियों को लेकर मोर पंख पहनकर, पीताम्बर पहनकर, नीले वर्ण वाले, घुंघराले बाल वाले, कमल नयन वाले, मुरली बजाते हुए जा रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, गाय उनके पीछे चल रही है। हाँ, बरहा पीड़म नटवर पपू, सुंदर वर्णन किया उन्होंने श्लोक में से, बालक लोग बोल रहे हैं। बोले कौन बोल रहे हैं? तो बालक बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं। तो बोले आप लोग कौन हो? रुक गया वो ये सुनकर, बोले आप लोग कौन हो? बोले हमारे, हम गुरु जी के शिष्य हैं, उनकी उनकी सेवा में यहाँ पर लकड़ी तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे भी आपकी जो आपने सीखा है अपने गुरुजी से, मुझे भी सीखना है, तो चलो। तो सब बच्चे लोग जो है लकड़ी काट कर वापस लौटते हुए इसको लेकर घर जाते हैं, और कहाँ पहुँचते हैं? व्यास देव के घर पे, क्योंकि सब लोग व्यास देव के शिष्य थे बालक लोग। तो दोबारा घर लौट के आते हैं इस श्लोक के आकर्षण से, कृष्ण भगवान के वर्णन से, और वहाँ बैठ कर फिर दोबारा एक बार व्यास देव से भागवत सीखते हैं। एक बार पेट में सीखा, बाद में बाहर आके भी दोबारा सीखा, और फिर विरक्त होकर फिर चले जाते हैं। और जब ये परीक्षित को साफ मिलता है तो वहीं पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो सब 88,000 साधुओं में कौन कौन है? नारद मुनि भी है, व्यास देव खुद भी है उसके अंदर। नारद मुनि है, व्यासदेव है, भारद्वाज मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र है, सप्तऋषि सब लोग, गौतम ऋषि सब लोग है उसके अंदर। इतना बड़ा राजा शाप प्राप्त करके अभी मरने वाला है, कैसा होगा उसका। सब लोग जमा हो गए और सब लोग ने मिलकर तय किया कि सुखदेव जी जो है, सुखदेव उनका नाम था, ये कथा करेंगे। हालांकि वहां पर उनके पिता बैठे हुए हैं, पिता और गुरु भी हैं, पिताजी के गुरु भी बैठे हुए हैं, सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। सब लोग बोलते नहीं नहीं हम सब में से इनसे सुनेंगे, सबसे योग्य तो यही है। और वहां पर गंगा जी के किनारे में बैठकर परीक्षित राजा ने 88,000 साधुओं के संग में सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवतम सुना। ये उसकी कथा है। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? एक ही प्रश्न पूछा कि जो विधान सुनना, कितने लोग जग रहे हैं, हाथ ऊपर करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि को? उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है, इसकी मृत्यु निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक सुनाए, 7 दिन और 7 रात तक, कोई लंच ब्रेक नहीं। हाँ, हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, लंच ब्रेक हुआ कि नहीं बीच में? हाँ, ब्रेकफास्ट हुआ ना बीच में, थोड़ा सा बाद में बाथरूम को टाइम मिला कि नहीं? 7 दिन और 7 रात तक कोई ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कोई नींद वींद कुछ नहीं। 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज ने ना झपके लेते हुए, ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, थक गया बेचारा, अभी 2 दिन हो गए सोया नहीं है तो अभी नींद ही आ रही है, सब बम्पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा उसको नींद पर, प्यास पर, भूख पर, क्रोध पर, सब उसका कंट्रोल था। ये प्रूफ हो गया ना उसका, कुछ दिन पहले जब प्यास लगी तो कंट्रोल खत्म हो गया था उसका। और 7 दिन 7 रात तक बैठा हुआ है, ना खाना पीना ना पीना कुछ नहीं है। इसका मतलब भगवान की इच्छा थी, भगवान ने विश्व के लिए श्रीमद् भागवत का निर्माण करने के लिए राजा परीक्षित को कुछ समय के लिए बेकाबू कर दिया। राजा परीक्षित को प्यास से बेकाबू हो गया, क्रोध से बेकाबू हो गया, अपराध कर बैठा, शाप मिला, उस शाप के वजह से राज्य त्याग कर दिया, फिर नदी किनारे आया, फिर बैठा, फिर प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत का पुनर्निर्माण हुआ। तो कृष्णो स्वधामो पगदे, जब कृष्ण भगवान लीला समाप्त करके अपने धाम में चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते, जब अपने धाम में चले गए तो पृथ्वी के ऊपर श्रीमद् भागवत का उदय हो गया, श्रीमद् भागवत रूपी चंद सूर्य का उगम हो गया, जो कृष्ण के समान ही था। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना यानी स्वयं कृष्ण का संग का अनुभव करना, उनके संग में बैठने जैसा ही है। श्रीमद् भागवतम सुनना यानी कृष्ण का संग करना। तो 7 दिन 7 रात बढ़ते हुए उत्साह के साथ में, ऐसा नहीं कि 7वें दिन में बहुत थका हुआ बेचारा, अभी क्या कहें उसको, शॉर्ट में बता दो, क्योंकि सो रहा है बेचारा, वो खाना नहीं खाया, शक्ति नहीं है, वो ग्लूकोज नहीं है ब्लड के अंदर, उसके बीपी ड्रॉप हो गया, उसका पल्स फीबल हो गई है। हाँ, ऐसा नहीं है, हर दिन हर एक के बाद में उसका उत्साह बढ़ रहा है, उसका प्रश्न करने का तरीका बढ़ रहा है। बार बार सुखदेव जी उसको अभिनंदन करते हैं, परीक्षित राजा तुम कितने महान हो, आज कथा का 7वां दिन है फिर भी तुम प्रश्न कर रहे हो। कोई कहेगा कितने दिन से सुन रहा हूँ, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपके अंदर तो इतना उत्साह, आप शरीर के बंधन के परे जा चुके हो, आपको भूख प्यास के परे जा चुके हो, और आपका आध्यात्मिक जो उत्साह है वो द्विगुणित हो रहा है, और गुना बढ़ रहा है। इसलिए मैं भी बताने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ, क्योंकि आप पूछने वाले इतने उत्साहित हो तो मुझे उत्साहित होना ही चाहिए। कथा के अंदर कथाकार को उत्साह तब मिलता है जब श्रोतागण उसको ध्यान से सुनते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं, तो कथाकार को भी और बताने की इच्छा होती है। समझो मैं कथा कर रहा हूँ, सब लोग खर्राटे भर रहे हैं, घर घुर घर, तो कथाकार बोलेगा अभी कथा समाप्त करो, चले जाओ यहाँ से। वो निकल जाएगा तो लोग उठेंगे ही नहीं, सब लोग सो रहे हैं। 1 घंटा उठेंगे, कथाकार कहाँ चले गए, वो तो गले 1 घंटा पहले चले गए, क्या करेंगे, सुनने वाला को है नहीं तो सुनाओ किसको। लेकिन ये बेचारे 88,000 साधु भी बैठे, वो भी चाय नहीं पी रहे, कोई वो भी देखो सोने रहे, कोई ब्रेक लेके वापस नहीं आए, वो इसके बाद का शो थोड़ी ब्रेक के बाद, ऐसा कुछ नहीं था उधर, नो ब्रेक, एक के बाद एक नई नई कहानी बता रहे थे। तो कृष्ण का चरित्र सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि हमारे रिलेटिव है कृष्ण भगवान ना, हमारे दादाजी सब लोग थे पांडव लोग, वो उनके प्रेमी भक्त थे उनके, वो दादाजी के कजिन ब्रदर थे कृष्ण भगवान, और ये हमारे रिलेटिव हैं, वो हमारे रिलेटिव जो है वो परम भगवान है, इतनी भाग्य की बात है। इसलिए चाव से पूछ रहे थे क्या किया कृष्ण ने, क्या किया कृष्ण ने। और बड़े उत्साह से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सब वर्णन कर रहे हैं, एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, बाल लीला से लेकर आगे, फिर द्वारका लीला, फिर हस्तिनापुर की कथा बताई उन्होंने, सब बताया, महाभारत की कथा बताई, सब कुछ बताया, एंड तक बताया, जब तक यादव सेना का नाश कैसे हुआ सब बताया उन्होंने। और फिर कलयुग के वर्णन बताया, फिर भागवत समाप्त हो गया तो फिर सर्प पक्षी आया उसको काटने के लिए, श्राप तो दिया था ना, लेकिन ऐसे कहा गया है कि सर्प पक्षी आने के पहले ही शरीर छोड़कर परीक्षित महाराज जा चुके थे, अंतर्धान हो चुके थे, और सांप को काटना, सांप का काटना एक फॉर्मेलिटी बन गया था, तो सांप दिया था अभी तो पूरा करना पड़ेगा उसको। इसलिए जिस शरीर से परीक्षित की आत्मा पहले ही भगवत धाम जा चुकी थी, वो मरे हुए शरीर को काटने के लिए पक्षी आया और काटा, वो शरीर गिर गया, लेकिन उसके पहले ही भगवान के विषय में श्रवण करते हुए परिपूर्णता, परफेक्शन प्राप्त करने के वजह से उसके पहले ही, ऐसा नहीं कि सांप का दर्द से दर्द हुआ, मृत्यु प्राप्त हुआ, फिर आत्मा निकल गया, ऐसा नहीं, उसके पहले ही प्रेम से आत्मा शरीर छोड़कर भगवान के पास चली गई थी, फिर शरीर को निमित्त मात्र से दंश किया और शरीर गिर गया और मृत घोषित किया गया उसमें। लेकिन प्रकट क्या हुआ बीच में, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम प्रेम अपमान तो महान किम वह परेर ईश्वर, यानी कि अगर श्रीमद् भागवत है तो और किस शास्त्र की जरूरत ही नहीं है, ये अमलम पुराण, इसमें अंदर कोई दोष नहीं है, ये उस उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवान के भक्त हैं, ये उनके लिए है जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, परमहंस लोगों के लिए बताया गया है इसको, लेकिन जो आम आदमी है वो भी इसको प्राप्त पढ़कर सुनकर अपने आत्मा को शुद्ध कर सकता है, ऐसा वर्णन किया गया है इसका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरया, कि जो ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्ण भगवान ने ज्ञान प्रकट किया, वही ज्ञान श्रीमद् भागवत के रूप में अभी 18,000 श्लोक के रूप में प्रकट हो गया है, ऐसे प्रथम श्लोक है उसका। हाँ, तो इतना महान शास्त्र है श्रीमद् भागवत, जो हम सबके लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि वहां पर पढ़ाया गया किसने नोट नहीं किया उसको, तो गायब हो गया, व्यासदेव ने उसको नोट किया, पहले से ही नोट करके रखा था, जब जो लिख रहे थे तभी गणेश जी से उसको नोट करके रखाया था, वही सिखाया अपने बालक को पेट के अंदर और पेट के बाहर भी, और वही आज हमारे लिए उपलब्ध है, सब जगह पर अवेलेबल है। हाँ, 12 वॉल्यूम है उसके, 18,000 श्लोक है, और मनुष्य जीवन में उसको पढ़ना चाहिए, ह्यूमन लाइफ उसके लिए दिया गया है। अगर मनुष्य बनकर भागवत नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारा जीवन कुत्ता बिल्ली के समान है, मनुष्य बनकर भी नहीं समझे तो क्या बन के प्रयोग समझेंगे उसको, इससे बड़ा जीवन कोई है ही नहीं मनुष्य के ऊपर, देवता लोग मनुष्य के नीचे होते हैं, देवताओं का जीवन भी मनुष्य के जीवन के भाग्य के सामने कम माना गया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं के जीवन भगवान की प्राप्ति करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा ऐश्वर्य होता है, बहुत भोग रहता है, बहुत आनंद रहता है, बहुत मजा रहता है, तो भूल जाते हैं भगवान को, लेकिन यहाँ पर बैलेंस में है सब कुछ, यहाँ पर बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देवता लोग कलयुग में लाइन लगा कर खड़े हैं कि कलयुग में वैष्णव भक्तों के घर में जन्म मिले तो बड़ी जल्दी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी, इसलिए वो सब देवता लोग भक्तों के घर में बालक बनकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग का मनुष्य का जीवन देवताओं के जीवन के भाग्य से भी बढ़कर है, और आप और हमको वो प्राप्त हो चुका है, केवल भक्त बनना है, बस इस जन्म में भक्त बनना है, अपने अपने धर्म के अनुसार जो बताया गया है भक्त बनना है और भगवान की प्राप्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है किसी का, कोई क्वेश्चन है? हाँ, सब लोगों को इसी जन्म में भागवत समझना है, याद रखना। हाँ, दिमाग बुढ़ा होने के पहले, याददाश्त खो जाने के पहले, बाल सफ़ेद होने के पहले, हाथ पांव कमज़ोर होने के पहले आपको ये समझना है, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली भी जिए, हम लोग भी जिए, उन्होंने भी बच्चे पैदा किए, हमने भी पैदा किए, हम भी बड़े हो गए, वो भी बड़े हो गए, वो भी मर गए, हम भी मरने वाले हैं, अंतर क्या है उसके अंदर? यूजलेस लाइफ। अगर वो ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भगवान की भक्ति को नहीं अपनाया सारा जीवन व्यर्थ है हमारा। अभी करना है अपने को, हाँ अगर अभी तक मालूम नहीं था, अब पता चला है तो अभी करना है, अभी समय बाकी है अपने हाथ में, अभी हम कल नहीं जाने वाले हैं, अभी टाइम है अपने लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।